व्यापकता की गहराई नामवर सिंह। अक्सर देखते हैं कि पानी के सोते की तरह लेखक भी साफ होता है तो उथला कहा जाता है और गंदला होता है तो गहरा। इसका ताज़ा नमूना यह है कि आलोचना के संपादक अपने को गहरा बता रहे हैं और प्रेमचंद को सतही। प्रेमचंद का दोष यह है कि उन्होंने समस्याओं का सरल समाधान दिया है, परंतु इसी सरल समाधान पर गहरे समझे जाने वाले उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार मुग्ध हैं। गबन की आलोचना करते हुए प्रेमचंद की कला शीर्षक निबंध में वे कहते हैं, बातों को ऐसा सुलझाकर कहने की आदत मैं नहीं जानता, मैंने और कहीं देखी है। बड़ी से बड़ी बात को बहुत उलझन के अवसर पर सुलझाकर थोड़े ही शब्दों में भरकर कुछ इस तरह कह जाते हैं, जैसे यह गूढ़ गहरी अप्रत्यक्ष बात उनके लिए नित्य प्रति घरेलू व्यवहार की जानी पहचानी चीज हो। उनकी कलम सब जगह पहुंचती है, लेकिन अंधेरे में भी सरलता से अपना मार्ग बनाती चली जाती है। अस्पष्टता के मैदान में प्रेमचंद अविजेय हैं। उनकी बात निर्णित, खुली और निश्चित होती है। आलोचना संपादक जिस समाधान को सरल कहते हैं, यह जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बड़ी से बड़ी बात को उलझन के अवसर पर सुलझाना है। वह सरल इसलिए मालूम होती है कि स्पष्ट, निर्णित, खुली और निश्चित है। ऐसी सरलता तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है, इसे जो नहीं जानते उनके लिए यह शॉर्टकट है। जंगल में भटकने वाले की यह पुरानी शिकायत है, कदम कदम पर संघर्ष करते हुए जिस होरी ने जिंदगी का लंबा रास्ता तय किया है उसने तो अपनाया शॉर्टकट, और जिसने बैठे बिठाए आसमान में सूरज का सातवां घोड़ा दौड़ाया उसका रास्ता हुआ लंबा। क्यों न हो, आसमान से धरती तक लंबी दूरी सपनों की भारी बोझ और टांगे बेकार। 9 दिन चले 2.5 कोस। शॉर्टकट की शिकायत केवल सातवें घोड़े की हो ऐसी बात नहीं है, शिकायत औरों को भी है। इनका विरोधी सीधी रेखा से उनका मतलब है सदस्यता। साहित्य में जहाँ सदस्यता होती है उसे वे समाज की सीधी रेखा से उसका मतलब है सदस्यता होती है उसे वे समाज की सीधी छाया या सत्य की सीधी छाया, सीधी रेखा कहते हैं। यह सीधी रेखा वही शॉर्टकट है जिसका निषेध करके तुरस्त अथवा वक्र पर चलने वाले को सलाह दी जाती है, चलई जोक चल वक्र गति यद्यपि सलिल समान। मतलब यह कि सदस्यता शॉर्टकट है, इसीलिए सतही साहित्य रचना के लिए लंबे अर्थात अनंत रास्ते पर निरुद्देश्य यात्रा करनी चाहिए। लेकिन ये निरुद्देश्य पथिक इतने सरल नहीं कि अपने को स्पष्ट शब्दों में निरुद्देश्य कह दें। इनका भी उद्देश्य और वह उद्देश्य है आत्मन्वेषण, वैसा ही जैसे बच्चे कभी कभी अपनी ही आंखें मूंद कर माँ से पूछते हैं कि बताओ मैं कहाँ हूँ। फर्क इतना है कि ये बच्चे नहीं हैं। इस प्रकार निरुद्देश्यता को ही उन्होंने अपना उद्देश्य बना लिया है और भरसक इसी का प्रचार करते रहते हैं। निरुद्देश्यता के कार्यक्रम का पहला सूत्र यह है कि साहित्य का संबंध समाज से काट दिया जाए, क्योंकि समाज के साथ बंधे रहने से कुछ न कुछ सामाजिक कर्तव्य का बंधन रहेगा ही। फलतः वक्र रेखा के अन्वेषक ने स्थापित किया कि जिन साहित्य प्रतिछाया में विकृति उत्पन्न होती है उनके पीछे साहित्य और सौंदर्य के अपने नियम जो सामाजिक आवश्यकता के बावजूद काम करते हैं, इन नियमों की क्रियाशीलता के कारण ही साहित्य ऊंची उड़ान भरता है और उसमें सार्वभौमिकता एवं श्रेष्ठता उत्पन्न होती है। साहित्य को श्रेष्ठ और सार्वभौम बनाने वाले अपने नियम कौन से हैं इसे बताने की क्या जरूरत, यह तो सभी जानते हैं। बताने की बात तो वह है जो सबको मालूम न हो। साहित्य लोगों का भ्रम दूर करने के लिए जोर देकर कहा गया है कि साहित्य के सौंदर्य का कारण समाज नहीं। इस विषय में फिर कोई भ्रम न रह जाए इसलिए आगे यह भी कह दिया गया है कि आलोचना के सामने असली सवाल सामाजिक यथार्थ नहीं बल्कि उस यथार्थ की विकृतियों के अध्ययन का है। इतना कहने के बाद भ्रम की गुंजाइश के लिए कहाँ जगह है। वेशक आलोचना यथार्थ की विकृतियों का ही अध्ययन प्रस्तुत कर रही है, और ऐसे अध्ययन के लिए ही सामाजिक यथार्थ से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। साहित्य सौंदर्य के अपने नियम समाज से दूर कर रही गढ़े जा सकते हैं, और वे गढ़े हुए नियम कैसे होते हैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण उपयुक्त उदाहरण है। आश्चर्य की बात नहीं, यह वक्र रेखा लेखक को उसी तरह अपने समाज से दूर ले जाती है, और इसके बाद तो वह सार्वभौम हो जाता है। अपने देश काल से जड़ कट जाने के बाद वह स्वभावतः सारी दुनिया का हो जाता है। इस ऊंचाई पर पहुंचकर वह व्यापक दृष्टिकोण से सभी के लिए सम्मान भाव से साहित्य रचने लगता है। इस सार्वभौमिकता की झलक इन लेखकों के उपन्यास के सार्वभौमिक चरित्रों और विचित्र भाषाओं के उदाहरण से मिल सकती है। पतनोन्मुख पश्चिमी लेखक के विचारों से अपनी संपादकीय टिप्पणियों को अलंकृत करके आलोचना में इसी सार्वभौमिकता का ऊंचा आदर्श उपस्थित किया जाता है। इस सार्वभौमिकता का आदर्श यह है कि साहित्य में समाज की छाया को किस प्रकार अधिक से अधिक बिगाड़कर प्रस्तुत किया जाए। साहित्यिक छाया में जितना ही बिगाड़ होगा, रचना में उतनी ही गहराई होगी। इस प्रकार वक्र रेखा से चलकर सार्वभौमिकता तक और सार्वभौमिकता से चलकर गहराई तक की यात्रा पूरी होती है। गहराई सार्वभौमिकता का ही दूसरा आयाम है, जो यह आलोचना के संपादकों का तकिया कलाम बन गया है। कभी ऊंचाई की ओर तो कभी गहराई की ओर, दोनों आयामों के इस व्यायाम में यदि कोई चीज नहीं आने वाली तो वह है सतह। शायद उच्च ऊभ चुभ करने वालों के लिए सतह वाले आयाम का अस्तित्व नहीं होता। विचारों की गहराई का नमूना है व्यक्ति स्वतंत्र का घोषणा पत्र, तो अनुभूतियों की गहराई के नमूने दर्जनों व्यक्तिवादी कविताएं और उपन्यास। इस प्रकार हम देखते हैं कि सतह के खिलाफ गहराई की आवाज़ उठाने वाले दरअसल समाज के खिलाफ व्यक्ति स्वतंत्र की बात कहते हैं। यह उनकी गहराई भी है और सतह भी, और जिस प्रकार उनकी गहराई और सतह में कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार सभी लेखक की गहराई और सतह में अविरोध है। लेकिन जिन लोगों का दिल उनसे अलग जा पड़ा और दिमाग के छिलके उतर गए हैं, उनके लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें भी अलग अलग और विरोधी दिखाई पड़ती हैं। जहाँ उन्हें व्यापकता दिखाई पड़ती है वहाँ गहराई नहीं मिलती, और गहराई मिलती है तो व्यापकता नहीं मिलती। प्रेमचंद्र में व्यापकता है तो गहराई नहीं है, जैनेन्द्र में गहराई है तो व्यापकता नहीं है, इसी तरह तुलसीदास में व्यापकता है तो गहराई गायब है, और सूरदास में गहराई है तो व्यापकता नदारद। व्यापकता और गहराई के इस विरोध में कुछ तो अपने आप में दोनों को महान कहकर जान छुड़ाते हैं, लेकिन जिन्होंने आलोचना के मूल्यमान मर्यादा का दायित्व लिया है वे व्यापकता के ऊपर गहराई की तरहीज देते हैं। इस कसौटी पर सूर्य श्रेष्ठ हो जाते हैं तुलसी से, और शरत चंद्र श्रेष्ठ हो जाते हैं प्रेमचंद्र से, क्योंकि जैनेन्द्र या अज्ञेय को खुलकर प्रेमचरित से श्रेष्ठ कहने का साहस सभी लोगों में नहीं आया है। देखना यह है कि किसी लेखक में व्यापकता के होते हुए भी जब हम गहराई की कमी पाते हैं तो वस्तुतः वह गहराई की कमी व्यापकता ही की ही कमी तो नहीं है। इसी तरह यदि कोई लेखक संकीर्ण होते हुए भी गहरा मालूम हो तो विचार करने की जरूरत है, हमारी उस गहराई में ही कमी नहीं है। सबका कहना है कि जैनेन्द्र और अज्ञेय प्रेमचंद की अपेक्षा बहुत कम व्यापक जीवन का कैनवास लेते हैं, फिर भी कुछ लोगों को उनमें प्रेमचंद से अधिक गहराई मिलती है। यह गहराई क्या है? कहते हैं यह अनुभूति की गहराई है। अनुभूति किसकी? दर्द की। दर्द किसका? प्रेम का। पेन ऑफ लिविंग और पेनफुल ट्रूथ, प्रेम का दर्द और दर्द का अनुभूति, क्योंकि कोई भी अनुभूति दर्द से रहित नहीं है। प्रेमानुभूति का यही दर्द सेवर और भुवन को तथा शशि और रेखा को शायद अधिक। दर्द की परिसमाप्ति मृत्यु या निराशा, यह अनुभूति हमारे जीवन को कितनी गहराई तक आंदोलित करती है, यह दर्द हमें दबोचना है, अवसन करता है, निष्क्रिय बनाता है, या हमें अपने संपूर्ण जीवन पर फिर से विचार करके नए सिरे से जीने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार इस अनुभूति की गहराई की परीक्षा करते हम अनिवार्य रूप से इसकी समाप्ति में जा पड़ेंगे। किसी को गहराई तक प्रभावित करने का अर्थ है उसके संपूर्ण अस्तित्व, व्यक्तित्व और भावसत्ता को प्रभावित करना और बहुत देर तक प्रभावित रहना। अनुभूति की गहराई का निर्णय एक व्यक्तित्व और एक क्षण से नहीं लिया जा सकता। गहराई का निर्णय दिक और काल सापेक्ष है। इस अनुभूति की गहराई पर विचार करते समय हमें साधारणीकरण के प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। तब सवाल उठेगा कि उस विशेष चरित्र तथा अनुभूति में अधिक से अधिक लोगों को और युगों तक पहुंचने की क्षमता है या नहीं। अनुभूति की गहराई को इस तरह तीव्रता के साथ सामान्यता का भी निर्वाह करना होगा। अनुभूति की शक्ति केवल तीव्रता में नहीं बल्कि अस्थायित्व में होती है, और अस्थायित्व का आधार वस्तुतः व्यापक मानवीयता हो है। जब किसी अनुभूति को हम गहरी कहते हैं और उसे मानवीय कहते हैं, और मानवीयता से व्यापकता खारिज नहीं है, मतलब यह है कि मानवीयता की व्यापकता भूमि पर ही कोई अनुभूति गहरी हो सकती है। इस दृष्टि से देखने पर तथा कथित गहरी अनुभूति वाले सुनीता, त्यागपत्र, शेखर, नदी के द्वीप जैसे उपन्यासों की गहराई की सीमाएं प्रकट होने लगती है। व्यापकता की कमी से उनमें गहराई की कमी आ गई है। उनमें व्यापकता की कमी इस बात में नहीं कि राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक जीवन के चित्रण की उपेक्षा की गई है। केवल नारी पुरुष के प्रणय पर लिखने से ही कोई उपन्यास संकुचित नहीं हो जाता, अर्थात संकुचित वह तब होता है जब प्रणय को संपूर्ण जीवन से काट कर चित्रित किया जाता है, और वे उपन्यास इसी अर्थ में संकुचित है। समस्या चाहे जितनी छोटी हो, परंतु व्यापक रूप से उपस्थित की जाने पर बड़ी हो जाती है। किसी उपन्यास को व्यापकता इस बात में है कि जीवन की छोटी समस्या को कितने बड़े परिवेश में और किस स्तर पर उपस्थित करता है। व्यापक परिवेश में ऊंचे स्तर पर किसी समस्या को रखने का कार्य वही लेखक कर सकता है जिसका संबंध अधिक से अधिक व्यापक सामाजिक परिवेश में हो, और इस संबंध के विषय में जिसकी समझ का स्तर भी काफ़ी ऊंचा हो। बड़ी मोटी बात है कि अपने बारे में ठीक से जानने के लिए अपने से संबंधित दूसरे लोगों के बारे में भी जानना जरूरी है। लेकिन जो लेखक अपने को उस ग्रंथि की तरह समझता है जिसके सभी सूत्र खो गए हैं, वह इस संबंध सूत्रों को न तो जान सकता है और न पा सकता है। जीवन की बढ़ती हुई जटिलता के परिणाम स्वरूप जिसकी व्यापकता का घोर क्रमशः अधिकाधिक सीमित होना चाहता है, उसकी हीनता ग्रंथि ने अपनी संकीर्णता की तो गहराई का गौरव दे डाला है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जीवन की जटिलता बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि सामाजिक संबंधों के सूत्र और भी व्यापक और घने हो रहे हैं। जरूरत इससे घबराने की नहीं बल्कि समझने की है। इन जटिल संबंध सूत्रों को समझने और सुलझाने से ही हमारे व्यक्ति में समृद्धि, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति साहित्य में श्रेष्ठता ला सकती है। मतलब यह है कि किसी की अनुभूति की गहराई व्यापक परिवेश पर निर्भर है। तालसिताय के पीरे की नितांत निजी चिंताओं में अनुभूति की इतनी गहराई इसलिए है कि उसके पीछे सारे रूस की राष्ट्रीय स्वाधीनता का संघर्ष है। अन्ना का अंतर्द्वंद इसलिए इतना मार्मिक है कि उसके पीछे रूस के कुलीन घरानों के व्यापक नैतिक हास की छाया है। प्रेम के साथ यहाँ संपूर्ण सामाजिक जीवन लिपटा चला आया है। इस तरह संबंध सूत्र जोड़ने के लिए लेखक को व्यक्ति, व्यक्ति और क्षण क्षण की अनुभूतियों का संबंध मिलाना पड़ता है। लेकिन गहराई का दम भरने वाले लेखक अलग अलग क्षणों में जीते हैं। उनका हर क्षण अपनों में पूर्ण और एक दूसरे से अलग है। इसलिए वे क्षण सुख और क्षण की अनुभूति अर्थात इंद्रिय बोध और क्षण सुख अर्थात इंद्रिय सुख, निसंदेह इन इंद्रियों बोधों के चित्रण में अत्यंत तीव्रता होती है, और इसलिए कुछ पाठक इन्हीं की अनुभूति को गहराई मान बैठते हैं। शशि की सप्तपर्णी छाह सोते ही तरह सोने वाले शेखर से इंद्रिय बोध तुलियन में रेखा के हिम पिंडों पर जमते और पिघलते हुए भुवन की एकंद्रीय सुख और सुनीता द्वारा संपूर्ण इंद्रियों की खुली दावत या गार्डन पार्टी या अनुभूति की गहराई के रूप में स्मरण किए जाते हैं। कुछ आलोचकों ने इन स्थलों को अश्लील बताकर निंदा भी की है, लेकिन जो साहित्य के मूल्यांकन का नैतिक मानदंड स्वीकार ही नहीं करते, उनकी गहराई तो इस अश्लील से खंडित नहीं होती। इसलिए उनसे तो अनुभूति के उसी अखाड़े में मिलना होगा। उन इंद्रियों वर्णनों की दुर्बलता इस बात में है कि वे अनुभूति के प्रथम चरण तक ही रुक गए हैं। इंद्रिय बोध अनुभूति की केवल पहली अध्याय है। इसके बाद उनकी मानसिक प्रतिक्रिया भावानुभूति की सृष्टि करती है, जो अंत में चिंतन से आलोकित हो उठती है। परंतु इंद्रिय बोध को भाव और चिंताओं की अवस्थाओं तक ले जाने के लिए क्षण के प्रवाह से गुजरना होता है, और क्षण जीवी लेखक इंद्रियों सुख के क्षण से आगे बढ़ते ही नहीं, और बढ़ते भी हैं तो मन की मन उसी क्षण को जीते रहते हैं। इस तरह काल प्रवाह में बहने से इनकार करके ये लेखक अपनी अनुभूति का सहज आवेग और विकास क्रम भी खत्म कर देते हैं। बंधे हुए क्षणों की बंधी हुई उन अनुभूतियों में इसलिए स्वास्थ्य और उल्लास का अभाव मिलता है। चिंतन को प्रौढ़ता और भाव की तरलता में व्यक्त हुए सशक्त इंद्रियों बोधों का वर्णन देखना हो तो गेटे का फाउस्ट और तालस्टाय का युद्ध और शांति अथवा अन्ना केरेनिना देखें। भाव और चित्रण के कारण इंद्रियों बोध में गहराई इसलिए आती है कि इनमें क्रमशः साधारण की शक्ति अधिक होती है। विशेष इंद्रियों बोध भाव और चिंतन की सामान्यता के सहारे व्यापकता प्राप्त करता है। उपन्यास के किसी विशेष चरित्र के निजी कार्यकलाप ऐसे ही सामान्य तत्वों के सहारे बहुत दिलचस्पी के हेतु बन जाते हैं, और इस तरह वह चरित्र किसी विचार का प्रतिनिधि बन जाता है। लेखक अपने चरित्र के व्यक्तित्व को भावों और विचारों की जितनी भूमियों पर उद्घाटित करता है, उसमें उतनी ही शक्ति आती है। मतलब यह कि अनुभूति की गहराई हर हाल में अनुभूति की व्यापकता से निर्धारित होती है। व्यापकता को तिरस्कार करके जो लेखक गहराई लाने का दम भरता है, वह दरअसल संकीर्णता के अंधकूप में पड़ता है। उसकी अनुभूति का अर्थ संकुचित होता है और गहराई उथली होती है। तुलसीदास की भावुकता पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल ने काफी पहले लिखा था, जो केवल दाम्पत्य रति ही में अपनी भावुकता प्रकट कर सके या वीर उत्साह का ही चित्रण कर सके, वे ही हैं जो जीवन का प्रत्येक स्थिति के मर्म स्पर्शी अंग का साक्षात्कार कर सके और उसे श्रोता या पाठक के सम्मुख अपनी शब्द पंक्ति द्वारा प्रत्यक्ष कर सके। इसके बाद विस्तार और गहराई का प्रश्न उठाते हुए शुक्ल जी फिर कहते हैं, गोस्वामी जी का भावात्मक सत्ता का अधिकार विस्तार स्वीकार करते हुए यह पूछा जा सकता है कि क्या उनके भावों में पूरी तरह गहराई या तीव्रता भी है? यह तीव्रता न होती, भावों का पूर्ण उद्रेक उनके वचनों में न होता, तो वे इतने सर्वप्रिय कैसे होते? इससे गहराई और व्यापकता का संबंध स्पष्ट है। ताल के सूखने पर उसकी व्यापकता ही नहीं, गहराई भी कम होती है। इसलिए जो लेखक अपनी गहराई बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अपनी व्यापकता भी बढ़ानी होगी, क्योंकि व्यापकता का चित्रण करने से लेखक सतही नहीं होता। सतही होता है तो सतह तोड़ने से। इसलिए जो गहराई के अभिलाषी हैं, उनके लिए जरूरी है कि पहले अपनी अपनी सतह तोड़ें। समाप्त।